ईरान के महान बुद्धिजीवी।
श्रोताओ, साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान के महान बुद्धिजीवी की अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज भी हम ईरान में सूफीवाद की एक महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे।
श्रोताओ, आज की कड़ी में हम ईरान में तीसरी शताब्दी हिजरी कमरी के मशहूर सूफी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन, अपनी बातों, यहाँ तक कि अपनी मौत से दुनिया में बड़ी हलचल पैदा कर दी और शताब्दियों का समय बीत जाने के बावजूद आज भी ईरानी व पश्चिमी शोधकर्ता उनके बारे में लिख रहे हैं। ईश्वर की याद में लीन रहने वाली इस हस्ती ने ईरान, भारत, तत्कालीन तुर्किस्तान, चीन और माचीन के शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। प्राचीन फारसी में मौजूदा चीन के सिनक्यांग राज्य के अलावा क्षेत्रों को माचीन कहते थे।
पश्चिम एशिया के विशेषज्ञों सहित दूसरे विशेषज्ञों ने हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को पहचानवाने के लिए बड़ी कोशिशें की, परंतु उसके बावजूद अभी भी उनकी वास्तविक शख्सियत के बहुत से आयाम स्पष्ट नहीं हैं। हल्लाज की शख्सियत को समझने में मुश्किल वजह यह है कि वो ईश्वर के प्रेम में इतना डूबे हुए थे कि इस प्रेम के नतीजे में उनके सामने आत्मज्ञान व आध्यात्म के नए क्षितिज खुल गए थे। उन्हें ऐसे गुड़ रहस्यों का पता चल गया था जिसकी वजह से उन्हें हल्लाजुल असरार्थ अर्थात गूढ़ बातों की गुत्थियाँ सुलझाने वाला कहा गया। ऐसे रहस्यों के चिन्हों को भली भांति उनके जीवन, उनकी बातों और उनके सत्कर्मों में देखा और समझा जा सकता है।
हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के बारे में बहुत से शोधकर्ताओं ने शोध किए हैं, लेकिन फ्रांसीसी पूर्वविद लुई मासिन्यू ने उनके बारे में सबसे गहन शोध किया और इस बारे में उनकी रचनाएं बहुत महत्व रखती हैं। हल्लाज का असली नाम हुसैन और उनके पिता का नाम मंसूर था। प्राचीन किताबों व स्रोतों में हल्लाज की पैदाइश का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में उनके जन्म का साल 244 हिजरी कमरी बराबर 858 ईस्वी बताया गया है। फ्रांस के तीन पूर्वविद लुई मासिन्यू ने अपनी किताब हल्लाज की मुसीबतें, हेनरी कार्बिन ने इस्लामी दर्शन शास्त्र के इतिहास में और रोजे आर्नल्ड ने हल्लाज का मत नामक किताब में हल्लाज के जन्म का साल 244 या इसके आसपास माना है, परंतु इनमें से किसी भी किताब में इस दावे की सच्चाई में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा लगता है कि हल्लाज के जन्म का साल अनुमान पर आधारित है, जिसके जरिए शोधकर्ताओं ने हल्लाज के जीवन की घटनाओं का अनुमान लगाया है। कुछ स्रोतों जैसे जामे की नफहातुल उन्स किताब और हल्लाज के बारे में की गई इशारी में हल्लाज के जन्म का साल 248 हिजरी कमरी बताया गया है।
हल्लाज का जन्म फारस प्रांत के बेजा शहर के उपनगरीय भाग में स्थित तूर नामक गांव में हुआ था। वो बचपन में ही अपने परिवार के साथ इराक के वासित नगर पलायन कर गए। हल्लाज शब्द का अर्थ रुई को बीज से अलग करने वाले या रुई धुनने वाले हैं। शुरू में उनकी यही उपाधि थी और धीरे धीरे उनका असल नाम उनकी उपाधि के सामने दब गया।
हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने युवा काल में ही इराक के वासित नगर को छोड़ दिया और प्रसिद्ध ईरानी परिज्ञानी सहल बिन अब्दुल्लाह का शिष्य बनने के लिए ईरान के दक्षिण में स्थित आवाज नगर चले गए और वहां वो सहलिया विचारधारा के अनुयायी बन गए और वहां उन्होंने सूफीवाद के सिद्धांतों को सीखा। इसके कुछ समय के बाद उन्होंने आवाज को ही छोड़ दिया और सूफीवाद की परम्परा के खिलाफ अम्र बिन उस्मान मक्के की शिष्यता ग्रहण करने की इच्छा में 262 हिजरी कमरी में वो बसरा चले गए और 1.5 वर्षों तक वहाँ रहे और जो कुछ अपने ईरानी उस्ताद सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी से सीखा था वहाँ उसे अपने नए उस्ताद अम्र बिन उस्मान मक्की की देखरेख में परिपूर्णता तक पहुँचाया। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने नए उस्ताद को आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके नए उस्ताद अम्र बिन उस्मान मक्की ने अपने युवा शिष्य हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के चेहरे में भलाई के चिन्ह देखे और आध्यात्म के क्षेत्र में उनके प्रसिद्ध होने की भविष्यवाणी की थी। ये वही समय था जब हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अबू याकूब अकअत की बेटी से विवाह कर लिया था। इस विवाह से उनके उस्ताद अम्र बिन उस्मान मक्की प्रसन्न नहीं थे और ये विवाह उनके विरोध के बावजूद हुआ था जो उस्ताद और शिष्य के बीच मतभेद का कारण बना।
कहा जाता है कि अबू याकूब अक्ता और अम्र बिन उस्मान मक्की के मध्य बसरा के सूफियों की अभिभावकता को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी और उनमें से हर एक ये चाहता था कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज केवल उनका अनुसरण करे। हुसैन मंसूर हल्लाज उन दिनों बसरा की जामे मस्जिद में पड़े रहते थे। वहाँ वो उपासना करते और पवित्र कुरान की तिलावत करते थे। वो अम्र बिन उस्मान मक्की और अबू याकूब अख्तर के मध्य मतभेद से दुखी थे और बसरा को छोड़कर बगदाद चले गए और वहाँ वो प्रसिद्ध ईरानी परिज्ञानी जुनैद के शिष्यों में शामिल हो गए।
जुनैद की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब की वे खोज में थे। बहरहाल हुसैन बिन मंसूर हल्लाज जुनैद के शिष्यों में शामिल हो गए और जुनैद ने अपने नए युवा शिष्य को मौन धारण करने और एकांत में रहने का आदेश दिया और हल्लाज ने भी कुछ समय तक वैसे ही किया जैसे उनके उस्ताद ने कहा था। ये वही समय था जब बगदाद और बसरा में जंगियों का आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन के कारण हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अपने नगर को भी छोड़ दिया और वो धार्मिक दायित्व हज के निर्वाह के लिए पवित्र नगर मक्का रवाना हो गए। एक वर्ष तक वो काबे के निकट रहे और मक्का के पहाड़ों के मध्य कठिन उपासना की। कहा जाता है कि इस दौरान वो केवल एक रोटी और एक घूंट पानी पर ही गुजारा किया करते थे और धूप से छाया में नहीं जाते थे। इसी प्रकार कहा जाता है कि ये वही समय था जब मक्का के सूफियों से उनकी दोस्ती हो गई और वहाँ बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए। एक वर्ष के बाद हुसैन बिन मंसूर हल्लाज मक्का के अपने कुछ सूफी साथियों के साथ बगदाद और अपने उस्ताद जुनैद के पास वापस लौट आए। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद लोगों ने उन्हें एक महान हस्ती के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि इस यात्रा के बाद हुसैन बिन मंसूर हल्लाज और उनके उस्ताद जुनैद के बीच परिज्ञान की दो परिभाषा सुगर और सहो को लेकर शास्त्रार्थ हुए।
कशफुल महजूब और कैशरिया किताबों सहित कुछ प्राचीन किताबों में आया है कि सुकर और सहव 3री शताब्दी हिजरी कमरी में सूफीवाद की महत्वपूर्ण बहस थी। प्रसिद्ध ईरानी परिज्ञानी बायजिद बास्तामी सुकर के पक्षधर थे। उनका 261 हिजरी कमरी में निधन हो गया था जबकि जुनैद सहव विचारधारा के पक्षधर थे। 297 हिजरी कमरी में जुनैद का भी निधन हो गया। सुकर या मस्ती वो हालत है जिसका अनुभव विशेष परिस्थिति में परिज्ञानी करता है और सहव या होशियारी वो हालत है जब परिज्ञानी निश्चेतना की हालत से सामान्य हालत में वापस आता है।
इन दोनों परिभाषाओं के मध्य चर्चा 4थी हिजरी कमरी शताब्दी में सूफियों के मध्य अपने चरम पर थी और उसके नतीजे में तिफुरिया और जुनैदिया नाम की दो विचारधाराएं अस्तित्व में आ गईं। जो लोग बायजीद तीफूर बिन ईसा बस्तामी की सुगर विचारधारा का अनुसरण करते थे उन्हें तीफूरिया कहा जाने लगा, जबकि जो लोग जुनैद की सह विचारधारा का अनुसरण करते थे उन्हें जुनैदिया कहा जाने लगा। बायजीद बस्तामी की समाधि ईरान के शाहरुद नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बस्ताम उपनगर में स्थित है।
हुसैन बिन मंसूर हल्लाज सुकर विचारधारा के मानने वाले थे, जबकि उनके उस्ताद जुनैद साहब विचारधारा के पक्षधर थे। कहा जाता है कि इन दोनों विचारधाराओं को लेकर हुसैन बिन मंसूर हल्लाज और उनके उस्ताद जुनैद के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ वो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के दुखी होने और बगदाद छोड़ने का कारण था। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को अपने उस्ताद से दुख पहुंचा था, इसलिए हल्लाज अपने उस्ताद की अनुमति के बिना ईरान के दक्षिण में स्थित तुस्तर चले गए और वो 1 साल तक वहां रहे। लोग उनसे प्रेम और उनका अनुसरण करने लगे।
लोगों में यही उनका सम्मान इस बात का कारण बना कि आवाज और तुस्तर में रहने वाले कुछ सूफी उनसे ईर्ष्या करने लगे। कहा गया है कि इसी ईर्ष्या के कारण उनके उस्ताद अम्र बिन उस्मान मक्की ने उनके बारे में पत्र लिखा और खुजिस्तान में रहने वालों की नज़र में उन्हें बुरा बनाकर पेश किया। इस प्रकार के व्यवहार से हल्लाज बहुत क्षुब्ध व दुखी थे। इसी प्रकार अपने अनुयायियों के बर्ताव से भी हल्लाज का दिल टूट गया था। इन सब बातों से तंग आकर उन्होंने अपने शरीर से सूफी वस्त्र को उतार दिया और कबा नामक का एक विशिष्ट मोटा वस्त्र धारण करके सामान्य लोगों में रहने लगे और परिज्ञान एवं सूफीवाद को तिलांजलि दे दी। परंतु ईर्ष्यालु लोगों ने इसके बावजूद उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके खिलाफ पत्र भी लिखते रहे। इससे वो तंग आकर 5 वर्षों तक लापता रहे और इस दौरान वो कुछ समय तक खुरासान और मेसोपोटामिया में रहे, जबकि कुछ समय तक सिस्तान और फिर अहवाज आ गए और वहाँ लोगों से बात की तो बहुत से लोग उनके पास एकत्रित हो गए और उन सब ने उन्हें हल्लाजुल असरार की उपाधि दी।
श्रोताओ, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज़।